महामूर्ख को महाकवि कालिदास ध्यान ने बनाया। नन्हे मुन्ने ध्रुव को ध्यान ने और जप ने त्रिभुवनपति को आकर्षित करने का सामर्थ्य दिया। ध्यान अद्भुत रसायन है, इसमें प्यास और तृप्ति साथ में चलती है। प्यास और तृप्ति, प्यास और तृप्ति, प्यास और तृप्ति करते करते परम तृप्ति के द्वार पहुंच जाता है। संसार में प्यास और उबान चलता है। धन की, भोग की, सेक्स की प्यास है और भोगा तो उबे, थके, तनाव। इसमें थकान तनाव नहीं है, अपितु मेट तक कठिन कु अंक भालके। ध्यान करने वाले की सेवा भी भाग्य बना लेती है, तो ध्यान स्वयं करे तो उसकी तो महिमा निराली। ध्यान करने वाले जोगी की सेवा आदमी को चमका देती। दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी हूँ, पाप कृतम अपि चेत दुराचारे भ्यो पापे भ्यो पाप कृतम सर्वज्ञान पल्लवे न व्रजिनम समतरिष्यसि। ध्यान वो रसायन है कि रस और तृप्ति के साथ यात्रा होती है और सारे सृष्टि का जो पालक पोषक और आनंद का उद्गम स्थान है उस परमात्मा से एकत्व करा देता है ध्यान। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है, ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं है। यज्ञ में वस्तु स्वधा स्वाहा होती है, ध्यान में अपने ही कुसंस्कार स्वाहा होते हैं। ध्यान से आवश्यक सामर्थ्य की प्राप्ति होती है और अवांछनीय दोषों की निवृत्ति होती है, लेकिन एक दिन में नहीं होगी, अभ्यास करेंगे तो। छूमंतर नहीं है इसमें, जैसे रासायनिक विद्या है, गणित विद्या है, दो और दो चार, ऐसा ही है ध्यान का भी। हम लोग नहीं जानते तो समझते योगी ने चमत्कार किया, बाकी वो भी एक मेथड। कई लामा आपसे बात करते और आप बोलते मेरे को फलाने से मिलना है, बोले अच्छा क्या नाम है उसका, ये अच्छा ठीक है, अच्छा तो वो आदमी अभी आधा घंटे में आ जाएगा, अच्छा बैठना। बाबा जी अपने सामने ही बैठे कमरे में इधर उधर, वो आदमी आया बराबर आवाज़ दिया तुम्हें फलाना, तो पूछा गया कि तुम कहाँ थे, बोले मैं स्नान कर रहा था, और बाबा से तो मेरा कोई परिचय नहीं था, लेकिन यही बाबा मेरे को देखे के चलो वहाँ और प्रेरणा के हम आ गए। बोले बाबा ये कैसे, बोले तुम्हारे लिए चमत्कार है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो ध्यान मन को वश कर देता है, मन संकल्प मन गति तुम्हारे रॉकेट से भी फास्ट है। अभी इंदौर जाना हो तो फ्लाइट से 20 मिनट तो लगेगा, और मन से जाना हो तो 20 सेकंड, तो क्या सेकंड का 20वां हिस्सा भी नहीं चाहिए। अमेरिका जाना हो, दुबई जाना हो, मन से कह गए। सूर्य की किरण चलती है 186,000 माइल की गति से पर सेकंड, 8 मिनट में यहाँ पहुँचती है, लेकिन आपकी चेतना वृत्ति उसी समय सूर्य को देख लेती। तो ध्यान तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को सुयोग्य बना लेता है। ईश्वरी उपहार, ईश्वरीय सहायता, ईश्वरीय प्रेरणा और ईश्वरीय सुख ध्यान के द्वारा उभरता है। भरतरी को जब गोरखनाथ की कृपा मिली तो भरतरी ने विश्रांति पाई, लग गए थोड़ा समय, विश्रांति पाई। कमी तो इस बात की है कि जो हमको हीरे मोती देना चाहते हैं उनसे हम कंकड़ की ही अपेक्षा करते हैं, हीरे मोती पर ध्यान नहीं देते। ये तो धंधे में बरकत, ये तो स्वाभाविक हो जाता है, इसमें तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वाभाविक रास्ते खुलते जाते। आत्मनामी संत के संपर्क में आए तो ये दे दो बाबा, ये कर दो, ये कर दो, बहुत छोटी छोटी मान्यता है। कोई करोड़पति का पत्नी है तो उसको रोटी के लिए चिंता करनी पड़ती है क्या? कपड़ों के लिए भीख मांगनी पड़ती क्या? अगर उसको कपड़े नहीं मिलते, रोटी नहीं मिलती, तो करोड़पति की इज्जत का सवाल है। ऐसे जब तुम ध्यान करते हो ईश्वर के होते, तो बाकी की चीज़ें तो कोई महत्व ही नहीं रखती। और कुछ सेवा करते तो ऐहिक के लिए करते, तो आप कंकड़ पत्थर ही ले रहे। सेवा करे तो परमार्थ के लिए, ईश्वर निमित्त। हम गुरु जी के यहाँ रहे, अगर हम शक्कर में बरकत की आशीर्वाद ले आते तो शक्कर बेच बेच के मर जाते, और क्या करते? शक्कर का बिजनेस था। नहीं नहीं, हमने तो ये भी नहीं मांगा कि हमें आत्म साक्षात्कार करा, हम तो रहे पड़े रहे, वो जानते हैं सब, लगे रहे। कई परीक्षाएं हुई, कई अब विरोध हुआ, अब आपको क्या बताऊं, मेरी अपनी पोल पट्टी। मैं तो अच्छी अच्छी बात बताऊंगा, अपनी पोल क्यों बताऊंगा? जो आदमी बोलेगा तो अपनी बढ़ाई की बात बोलेगा, अच्छी बात बोलेगा, पोल पट्टी कैसे बोलेगा? ये तो जीव का स्वभाव है। लेकिन गांधी जैसे जैसे जीव भाव से थोड़ा आगे उठते तो कभी सच्चाई बोल देते। आप किसी को बोलना नहीं, हम आश्रम में सेवा करते और अपना मूंग उबाल के खाते। अब मूंग उबालने में मिट्टी के तेल को खर्च होता था, तो हम मूंग की दाल उबाल लेते थे। दाल में भी मिट्टी तेल खर्च हो जाएगा तो पैसे नहीं है ज़्यादा, केरोसिन का खर्च है, तो कभी अध कच्ची पक्की खा लेते थे और पानी पी लेते थे। देखो किसी को बोलना नहीं, बहुत दिन हो गए रोज दाल पीते पीते मन भी उब जाता है। हमने क्या करा, थोड़ी दाल ज़्यादा उबाले और ठीक से पकाए और बराबर उसको मथा। फिर गुरु जी के पास गए। मैं क्या, गुरु जी मेरी बहुत इच्छा है। अब इच्छा ऐसी नहीं थी, बेईमानी थी मेरी। मेरी बहुत इच्छा है कि आप आज मेरा, मैं थोड़ी दाल ले लेता हूँ, वो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा बनाए, स्वीकार करो, मेरी इतनी प्रार्थना है, इच्छा बहुत। इच्छा इतनी नहीं थी कि गुरु जी खाए, इच्छा ये थी कि गुरु जी को दाल दे दें तो बदले में एक आध फुलके का आज्ञा मिल जाएगा। सीधी बात है। मन में गहरे में तो ये था, गुरु जी स्वीकार कर लें तो बोले अच्छा भाई दाल ले लेते तो तुम फुलका भी इसको दे दे, रसोई को बोल देते भाई एक दो फुलका दे दे। तो फुलके खाए हुए कितना समय बीत गया, सिंधी साहब तो फुलका खाते। तो दाल बाल बना के बड़ा संकल्प करके बड़े आज ही पूरी तपेली ले गया। तो बोले क्या कैसे, ऐसा मैं दाल बना के लाया, आज आप स्वीकार करें। तो रसोई को बुला के, वीरमान ये लाया बेचारा, थोड़ा ले लेना। अब वो तो सोचता था कि ये मेरे रास्ते में कांटा है, पॉलिटिशियन। ये मनुष्य तो जहाँ मनुष्य होगा उसके गुण धर्म तो लेके ही जाएगा। तो उसने वो मेरी दाल जो एक कटोरी भर लेनी थी तो कटोरी भर बचाई, बाकी सब रख ली। मैं कहा ठीक है, कटोरी भर दाल है तो दो फुलके मिल जाएंगे या चावल मिल जाएगा। फिर हम तो देखते रह गए, खा पी के उन्होंने बर्तन मान दिया, टुकड़ा बचा तो कुत्ते को डाल दिया लेकिन मेरे को नहीं दिया। और मेरा मन भी देखो, अपने संकल्प की पूर्ति की गुलामी, ये कपट करा। तो सारे संकल्प अपने पूरे नहीं होते, ऐसा कोई धरती का माई का लाल धरती पर ये नहीं कह सकता कि मेरी सब इच्छाएं पूरी हो गई। और ऐसा ये भी नहीं कह सकते कि इसकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई। कुछ इच्छाएं पूरी होती और कुछ नहीं होती। तो घर बार छोड़कर तितिक्षा सहकर हजारों विरोध ये वो सहकर भी गुरु के आश्रम में रहते थे और सेवा में, फिर भी देखो मन कैसा कपट करता कि दाल के बदले में एक फुलका मिल जाए। ये बोलना नहीं किसी को भाई, प्राइवेट बात है ना।
नारायण हरि।
तो संकल्प की पूर्ति में पराधीनता है। अब इतना इतना नाटक किया लेकिन अपना संकल्प लेके क्या ना कि एक पुल का मिल जाए, नहीं मिला। संकल्प की पूर्ति की अपेक्षा संकल्प की निवृत्ति कर दे तो प्रारब्ध वेग से खींच के आ जाता। पुल का तो क्या अभी इतना खींच के आ रहा है। बोर्ड पर यह लिखना पड़ता है कि फल फ्रूट रुपया पैसा चीज वस्तु की जरूरत नहीं है, ऐसा लिखना पड़ता है। कभी ऐसा नहीं कहा अथवा लिखा कि आप तन मन धन से सेवा कीजिए, ये आवश्यकता है। ऐसा अभी तक किसी आश्रम में हमने नहीं लिखा। हाँ, आश्रम के नाम पर कोई ऐसा वैसा करते तो बोर्ड लगा दिया कि आश्रम को कोई चीज वस्तु के आश्रम के नाम कोई चंदा करे या चीज वस्तु मांगे तो आश्रम को खबर करो, आश्रम की तरफ से ऐसे चंदे बंदे नहीं होते। ये बोर्ड आपने पढ़े होंगे, पढ़ाए गए। तो संकल्प निवृत्ति करने के बाद तो पूरी प्रकृति अनुकूल हो जाती, और संकल्प पूर्ति में एक फुलका नहीं मिला। और कभी मिल भी जाता था क्या होता, अपने को चतुर मानते के देखो अपने आइडिया से ले लिया, और फिर दूसरे दिन को हलवा मांगो, तीसरे दिन ये मांगो। अच्छा हुआ कि पूर्ति नहीं हुई, तो संकल्प निवृत्ति के रास्ते पे चित्त लगा, भगवान की कृपा हुई। तो संकल्प पूर्ति से जो संकल्प पूर्ति की वस्तु मिलती है उससे जो मजा आता है उसमें जीव बंध जाता है। तो संकल्प पूर्ति के पहले जो अवस्था थी, संकल्प पूर्ति हो गई, वो वस्तु भोग गई, फिर भी वहीं जाके भटके जाते हैं। पुलका खाने की जो इच्छा थी, पुलका मिल जाता तो फिर क्या होता, तो पुलके न खाने में जो अवस्था थी दूसरे दिन वही अवस्था रहती। तो संकल्प पूर्ति विषयों में आबद्ध करती है, संकल्प पूर्ति की वासना परिस्थितियों में आबद्ध करती, संकल्प पूर्ति की वासना ध्यान की गहराई से उखाड़ के भगा देती, और संकल्प की निवृत्ति सहज ध्यान स्वाभाविक ध्यान हो जाता है। फिर तो खाना पीना उसकी पूजा हो जाती है। खाऊं पीऊं सो करूं पूजा, हरूं फिरूं सो करूं परकर्मा, सोऊं तब करूं दंडवत, भाव न राखूं दूजा, साधु भाई सहज समाधि बली, गुरु कृपा भई जा दिन से दिन दिन अधिक चली, साधु भाई सहज समाधि बली। संकल्प पूर्ति की वासना मिट्टी तो सहज समाधि आ जाती, उसके पहले ये समाधियां सीखनी करनी पड़ती। कल बताया था कि पूर्व काल के योगियों को नाड़ी शोधन के लिए नेती धोती नवली भस्त्री का क्रियाएं करनी पड़ती थी। फिर आद्य शंकराचार्य ने खोजा आम आदमी भी नाड़ी शुद्धि करके चित्त शुद्ध करके अपना परमात्मा सुख पा सके। उन्होंने सुगम उपाय खोजा, श्वास लिया एक नथुने से दूसरे से छोड़ा, पूरा श्वास लिया और पूरा छोड़ा, फिर पूरा उसी नथुने से लिया दूसरे से छोड़ा, फिर दूसरे से लिया और पहले से छोड़ा। ऐसे तीन प्राणायाम करें, सुबह तीन, दोपहर तीन, शाम फिर चार पांच, ऐसे दस दस पे पहुंचे। तीन महीने के अंदर नाड़ी शुद्धि हो जाए। फिर आसन जमा कर बैठे, स्थिर आसन करके बैठे और अभ्यास करें मेरी सुषुप्त कुंडलनी शक्ति जागृत हो। कुंडलनी शक्ति जागृत होती है तो फिर आपके बाकी की यात्रा आपको करनी नहीं पड़ती, ध्यान में होने लगती, क्रियाएं होने लगेगी, मुद्राएं होने लगेगी, आसन होने लगेंगे, दिव्य गंध अपने आप आने लगेगी। और जरूरी नहीं कि दिव्य गंध ही आए, और कुछ हो, और ये सब पसार हो जाएगा जन्म जन्मांतर के संस्कार। और कुंडलनी जागृत हुई तो व्यक्ति की योग्यता निखर आती, मूलाधार केंद्र रूपांतरित हो तो आनंद और सत्य संकल्प सिद्धि अपने आप आ जाती, स्वाधिष्ठान केंद्र थोड़ा रूपांतरित हो तो दादुरी सिद्धि आने लगती, मणिपुर केंद्र रूपांतरित हो तो प्रकृति के रहस्य समझ में आने लगते, और अनदेखे सुने शास्त्रों पर व्याख्या करने का सामर्थ्य निखर आता है। तो इतना बड़ा अद्भुत खजाना पड़ा है, अनाहत केंद्र विकसित होता तो उसका कुछ और होता, विशुद्धाख्या केंद्र विकसित होता है तो संसार स्वप्न जैसे ही लगता है। जैसे अर्धनिंद्र आदमी अर्धनिंद्रित व्यक्ति सोया हो ऐसे ही संसार की आवाज सुनता भी हो ये वो कोई पड़े ऐसे ही आत्म सुख इतना बना रहता है कि सुख दुख की चोट आकर्षण संकल्प पूर्ति अपूर्ति जैसे अर्धनिंद्रित व्यक्ति सब भुनभुनाहट की परवाह नहीं करता ऐसी दशा। छठा नेत्र विकसित होती तीसरा नेत्र छठा केंद्र तो पूर्व संचित तमाम संस्कार तमाम आकर्षण तमाम वासनाएं तमाम पाप ताप खाक हो जाते। अविशुद्धाख्या केंद्र में आकर योगी अगर वरदान देता है कोप करता है तो अमिट हो जाता है। यदि वह संकल्प चलाए मुर्दा भी जीवित तो हो जाए ये सामर्थ्य सबके अंदर बढ़ा है। सहस्त्र सार में दिव्य मति दिव्य प्रकाश दिव्य ज्ञान का अनुभव होता है। प्रकाश माना रोशनी नहीं, किसी भी विषय के लिए जरा सा शांत हो तो आपको ऑफिस में जाएंगे तो सेकंड सैटरडे ऑफिस बंद है साहब नहीं मिला, लास्ट सैटरडे ऑफिस बंद है साहब नहीं मिला, इतवार है साहब नहीं मिला। लेकिन प्राइम मिनिस्टर आने वाला है उस दिन साहब अपने आप मिलते हैं, उस चाहे संडे हो चाहे सैटरडे हो साहब अटेंशन में आ जाते। ऐसे ही तुम परमात्मा तत्व से मिलो तो फिर ग्रह नक्षत्र वास्तु ये सब तुम्हारे लिए अनुकूल हो जाएंगे। जय राम जी की। राम जी का राज्य कम राज्य अभिषेक बोले जिस दिन राम जी बैठेंगे उस दिन सब ग्रह अटेंशन में आ जाएंगे। तो कभी कभी हम बहुत करते हैं और थोड़ा मिलता और खप जाता उसमें, और कभी जब संकल्प पूर्ति की वासना छोड़ देते कुछ नहीं करते तो मुख सत्संग होता है, कुछ नहीं करते तो बहुत मिल जाता है। कुछ नहीं करने का मतलब ये नहीं कि आलसी हो जाए प्रमादी हो जाए पलायनवादी हो जाए जड़ बन जाए, नहीं, कोई संकल्प ना करे, संकल्प आए तो उठा के हटा दे, नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए जा ओम शांत। अरे हमारे संकल्प से क्या माँ के शरीर में दूध बना क्या, स्वाभाविक है। तो हमारे संकल्प को हमने पकड़ना छोड़ दिया तो अब ईश्वर के संकल्प से जिएंगे और ईश्वर ज्ञान स्वरूप है। एक शराबी दूसरे को शराबी बनाना है चाहता है, एक भंगड़ी दूसरे को भंगड़ी बनाना चाहता है, एक जुआरी दूसरे को जुआरी बनाना चाहता है। तो हमने अपनी पकड़ अकड़ छोड़ दी तो ईश्वर का संकल्प गुरु तत्व का संकल्प तो वो तो मुक्त आत्मा है तो हमें मुक्त कर देंगे। हम कर्तव्य कर्म करें लेकिन संकल्प की पूर्ति अपने संकल्प की पूर्ति छोड़ दें। चलो भैया का संकल्प पूरा हो जाए, माँ का संकल्प पूरा हो जाए, फलाने का संकल्प पूरा हो जाए, शास्त्र उचित, दोस्त का संकल्प पूरा हो जाए, उसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रांडी पिलाए और हम पी लें, शास्त्र उचित, अपने संकल्प की पकड़ छोड़ो तो दूसरे के संकल्प पूर्ति में आप निमित्त बन जाओगे। और जो दूसरे के संकल्प की पूर्ति में निमित्त बन जाता है वो ईश्वर बन जाता है, और जो अपने संकल्प की पूर्ति का दास बनता है वो जीव बना रहता है। महात्मा लोग ईश्वर तुल्य पूजे जाते हैं उसमें यही रहस्य है। हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अब तुम जब किसी के काम आते हो लाखों के काम आते हो, किसी तुम्हारी मोपेट काम आती तो ऑयल पेट्रोल मिल जाता है उसको बेचारे को बिना मांगे, तुम्हारी कार तुम्हारी साइकिल तुम्हारे काम आती है तो उसकी आवश्यकता पूर्ति हो जाती, जड़ चीजों की आवश्यकता पूर्ति हो जाती है तो तुम चेतन हो तुम्हारी आवश्यकता कैसे रुकेगी। अभी तो तुम अपनी आवश्यकता के लिए आप ही सिर खपा रहे हो, आप अपना संकल्प छोड़ दो आवश्यकता आसानी से पूरी हुई, लेकिन दूसरे के संकल्प की पूर्ति होगी तो पूरा समाज आपके संकल्प को लेकर चल देगा। आपका तो संकल्प रहेगा नहीं तो ईश्वर का संकल्प आपके द्वारा फलित होता जाएगा। आप ईश्वर के अभिन्न अंग जो थे वो अपने को महसूस करने लगेंगे। बहुत शॉर्ट रास्ता है और बहुत बहुत कुछ मिलता है। भागती फिरती थी दुनिया जबकि तलब करते थे हम, अब की ठुकरा दी तो वो बेकरार आने को है। जितना बाहर के सुख के आप इच्छा छोड़ते उतना ही बाहर के सुख के साधन आपके इर्द गिर्द मंडारते हैं। मंडारते और आप उसमें लपक पड़े तो आप थोड़े कमजोर हो गए, उनकी परवाह नहीं किया तो आप बलवान हो गए और भी खिंच के आएंगे।